मुख्य समाचारों में, ऑस्ट्रेलिया में 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण रोल आउट का विस्तार। विक्टोरिया में 2 और ओमिक्रॉन मामलों का पता चला। भारत में कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृतकों का आज अंतिम संस्कार। और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया ओलंपिक इतिहास। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन मिल सकेगी। टीकाकरण पर प्रशासन के ऑस्ट्रेलियन तकनीकी सलाहकार समूह ATAGI ने इस सप्ताह के शुरू में चिकित्सीय सामान प्रशासन द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद इस आयु वर्ग के 2.27 मिलियन बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दी है। मॉडर्ना के लिए भी मंजूरी मांगी जा रही है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि रोल आउट 10 जनवरी से शुरू होगा।
As a parent, there are no more important decisions that you make than those you make about the health and well-being of your children. And we want to make sure that we have been one of the first countries after in North America, in the United States and Canada, having observed their experience and looked at their results to be able to move to vaccinations for 5 to 11 year olds.
फेडरल विपक्ष का कहना है कि ये महत्वपूर्ण है कि सरकार के पास छोटे बच्चों को कोविड-19 टीके लगाने के लिए एक ठोस योजना है, क्योंकि वयस्कों के बीच शुरुआती रोल आउट में समस्याएं थीं। डेप्यूटी लेबर लीडर रिचर्ड माल्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
A lot of parents, I'm one of them, will be really excited about the opportunity to have their young kids vaccinated and protected from the virus. But it's really important that the government has a plan to roll out this vaccine. This government has already stuffed the vaccine rollout once. It can't do it again. And it's really important that for the kids of our nation, that they are getting the vaccine in a timely manner.
विक्टोरियन स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन संस्करण के 2 और मामलों की पुष्टि की है, जिससे राज्य के कुल 3 मामले सामने आए हैं। सकारात्मक परीक्षण करने वाले नवीनतम लोग 30 नवंबर को दुबई से एक उड़ान पर आए। जीनोमिक अनुक्रमण जांच चल रही है कि क्या किसी तीसरे यात्री में भी ओमिक्रॉन है या नहीं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उड़ान के अन्य यात्रियों से संपर्क किया गया है और परीक्षण करने के लिए कहा गया है। राज्य में आज 1200 से अधिक नए कोरोना वायरस मामले और 2 कोविड-19 मौतों को दर्ज किया गया है। क्वींसलैंड ने कोविड-19 के 6 नए सामुदायिक मामले दर्ज किए हैं, जो सभी गोल्ड कोस्ट पर हैं। इसके कारण ब्रॉड बीच स्टेट स्कूल में स्कूल ग्रेजुएशन को रद्द करने की बात हुई है, क्योंकि एक छात्र ने वायरस का सकारात्मक परीक्षण किया है। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 80% क्वींसलैंडर्स को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, लेकिन अधिकारियों को चिंता है कि गोल्ड कोस्ट की दरें राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में कम हैं। स्वास्थ्य मंत्री इवेट डार्थ का कहना है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में कोविड-19 परीक्षण क्षमता बढ़ाई जाएगी।
We can assume that there is likely to be transmission happening across the Gold Coast. We know that the Gold Coast double dose rate of vaccination is around 4-6% lower than the rest of Brisbane. So we need people to come out immediately and get vaccinated.
New South Wales में लॉकडाउन हटने के बाद से नए कोविड-19 मामलों की उच्चतम दैनिक टैली की रिपोर्ट है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने वर्ष के अंत में होने वाले संक्रमणों में और अधिक वृद्धि की आशंका व्यक्त की है। राज्य में 516 मामलों का पता चला है, जो 9 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक वृद्धि है। नए मामलों में कोई भी ओमिक्रॉन संस्करण नहीं है। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर जेमी मैकॉल्टी का कहना है कि पब, क्लब और पार्टियों जैसी सेटिंग में बढ़ते संचरण से अधिकारी चिंतित हैं।
The transmission in these types of settings is contributing to the increasing cases in New South Wales, and we urge people not to attend any of these social functions or venues if you have any symptoms at all.
पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड का कहना है कि वो निराश हैं कि फेडरल सरकार और कुछ लेबर राजनेताओं ने ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में न्यायिक जांच के आह्वान को खारिज किया है। श्री रड ने न्यूज कॉर्प में रॉयल कमीशन जांच का आह्वान किया था। इस पर साल भर चलने वाली सेनेट कमेटी ने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया विनियमन प्रणाली की न्यायिक जांच स्थापित की जानी चाहिए। लेबर और ग्रीन्स दोनों सेनेटर्स निष्कर्षों का समर्थन करते हैं, लेकिन विपक्ष के संचार प्रवक्ता मिशेल रॉलैंड सहित वरिष्ठ लिबरल और लेबर सांसदों ने इस आह्वान को खारिज किया है। ग्रीन्स सेनेटर सारा हैंसन यंग, जिन्होंने समिति की अध्यक्षता की, उनका कहना है कि वो हैरान नहीं हैं।
Politicians for quite some time now have not been brave enough to stand up to the power of the Murdoch press. They go weak-kneed, and this is a media empire that picks and chooses who is the prime minister, and then boast about it. Well, everybody knows that that is wrong. That is not okay. That should not be happening. The Australian people should decide, not a media empire.
एक नई रिपोर्ट प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के आसपास और अधिक पारदर्शिता और इस प्रथा को तुरंत रोकने के लिए कह रही है। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग उन अपराधों की संभावना और जोखिम का अनुमान लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक, एल्गोरिथम और डाटाबेस का उपयोग करती है, जो अभी तक नहीं हुए हैं। ये चिंता पैदा कर रहा है कि ये विविध पृष्ठभूमि के युवाओं को गलत तरीके से लक्षित कर सकता है और नस्लीय प्रोफाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर इलो डियाज का कहना है कि इसमें अभी भी बहुत गोपनीयता है, जिससे विविध समुदायों को अति पुलिसिंग का परिणाम भुगतना पड़ता है।
Potentially, every interaction a young person of color has with a police officer goes into a database. And so these databases are then fed into different software and algorithms and AIs to try to help them predict what that young person will do. So, for example, potentially, just because a person has an association with someone who's committed the crime in the past, their risk rating might rise. Just because of their interaction with them.
भारत में तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत अन्य 12 लोगों की आज अंत्येष्टि की जाएगी। स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 11 बजे से जनरल रावत उनकी पत्नी के शवों को उनके परिवार, दोस्तों और जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित घर पर रखा गया है और अंत्येष्टि यात्रा दोपहर स्थानीय समय के अनुसार 2 बजे से शुरू होगी। कल बृहस्पतिवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा सचिव अजय कुमार ने इस दुर्घटना हादसे में दिवंगतों को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों के पार्थिव शरीरों को भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से सुलूर एयरबेस से दिल्ली लाया गया। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु स्थित एक सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 54 रुपए 11 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में, ऑस्ट्रेलिया ने कर्लिंग के लिए नेदरलैंड्स में फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट जीतकर ओलंपिक इतिहास रच दिया है। 1998 में कर्लिंग के ओलंपिक पदक का खेल बनने के बाद से टेली गिल और डीन ह्यूबिट क्वालिफाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियंस हैं। दोनों ने बिना हारे सभी 7 मैचों में जगह बनाई। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। होबार्ट में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। कैनबरा में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।